नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री ग्वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमरीका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। शी जिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेथ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। ज़ेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और यूएई के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोबिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद ये समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।